इप्सिता वहीं अभिमन्यु के बगल में ही खड़ी थी। मासा ने सबके सामने आकर अभिमन्यु का राजतिलक किया और मासा ने अभिमन्यु से उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। वो बस अपना फ़र्ज निभा रही थी। उनके चेहरे पर नाराज़गी अभी भी साफ नज़र आ रही थी। अभिमन्यु जानता था कि मासा इस टाइम से नाराज़ क्यों थी, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। इप्सिता ने मासा की तरफ़ देखकर अपने मन में कहा, हमारी वजह से कहीं अभिमन्यु और मासा के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इप्सिता ये बात सोच ही रही थी कि थोड़ी ही देर में अभिमन्यु का राज्याभिषेक पूरा हुआ। नरेंद्र और पल्लवी अभिमन्यु को राजा बनते देखकर गुस्से से तिलमिला उठे। नरेंद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हम एक बार फिर से हार गए, पहले भाई साहब से हारे थे और अब उनके बेटे से। इतना बोलकर नरेंद्र ने गुस्से से अपना हाथ छटका और वो वहां से चला गया। नरेंद्र को इस तरह वहां से जाते देखकर पल्लवी भी उसके पीछे पीछे गई। अभिमन्यु ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, अब यहाँ पर जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स मौजूद हैं उन सबको हम अपने रिसेप्शन में इनवाइट करते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु वहां से इप्सिता का हाथ पकड़कर अंदर आ गया और सभी लोग धीरे धीरे अंदर आए। नंदिनी उदय अपने मम्मी पापा के साथ राजमहल के अंदर आया। नंदिनी और उदय दोनों अभिमन्यु के पास आकर उसे राजा बनने की बधाई देने लगे। नंदिनी ने इप्सिता को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इप्सिता ने उससे पूछा, तुम ये बताओ हमें, तुम दोनों के साथ मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? नंदिनी ने इप्सिता की तरफ देखा और उसे पूरी बात बताते हुए कहा, मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों वहीं रुके हैं। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी मम्मी पापा की तरफ देखा। तभी नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है इशू, और उन्होंने उदय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और उदय तो मान भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया और हम सब सच में बहुत खुश हैं और एक साथ हैं। इप्सिता ने नंदिनी की ये बात सुनी, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो खैर, मम्मी पापा को अपनी गलती समझ में तो आई, अच्छा ही है, आखिर अपने मम्मी पापा से कब तक ही नाराज रहेंगे। नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ इशू, तू भी बात कर लेना मम्मी पापा से, वो इतने भी बुरे नहीं हैं, और उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। इप्सिता ने वहां से थोड़ी दूर पर उदय के साथ खड़े अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ किसी और दिन हम बात कर लेंगे, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और सिचुएशन भी ऐसी है, आज ठीक नहीं रहेगा। उसकी इस बात पर नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और ड्रामा करते हुए बोली, अच्छा ठीक है रानी सा, फिर हमें इजाज़त दीजिए, राज्याभिषेक तो हो गया है ना। नंदिनी ने जानबूझकर उसे रानी सा कहकर बुलाया तो इप्सिता उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर नंदिनी हंसने लगी। उसे हंसते देखकर इप्सिता ने भी बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या नंदिनी, तुम भी कभी नहीं सुधरोगी ना, वैसे इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें वापस जाने की? इप्सिता की बात का जवाब देते हुए नंदिनी ने बताया, अरे वो मम्मी आ रही है ना शाम को तेरे रिसेप्शन में शामिल होने के लिए, तो बस उन्हें ही लेने एयरपोर्ट जाना है। मैं और उदय हम दोनों जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइट आधे घंटे में लैंड करने वाली होगी और उन्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो वो अकेले आ नहीं पाएंगी। अच्छा आंटी आ रही हैं, पहले बताना था ना, मैं किसी को भेज देती उन्हें लेने और वो सीधे यहीं पर ही आ जाती। अरे नहीं, उदय ने कहा था कि हम दोनों ही चलेंगे मम्मी को रिसीव करने, बस इसीलिए, और वैसे भी राज्याभिषेक में शामिल होना था वो तो हो गया ना, इसलिए अभी हम लोग निकलते हैं, बाय, शाम को मिलेंगे फंक्शन पर। इप्सिता ने स्माइल करते हुए कहा, ओके बाय, ध्यान से और आराम से जाना और मुझे फ़ोन कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। नंदिनी उसे छेड़ते हुए बोली, टाइम होगा रानी सा के पास अब हमारा फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए। नंदिनी की इस बात पर इप्सिता ने गुस्से वाला मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा तो नंदिनी फिर से हंसने लगी और बोली, अरे यार मजाक कर रही हूँ, अच्छा बाय, अब चलती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी ने उसे गले से लगा लिया और फिर उदय और उदय के मम्मी पापा के साथ वहां से चली गई। इप्सिता के परिवार के वो सारे लोग ही वहां से निकल गए। नंदिनी के जाने के बाद इप्सिता फिर से अभिमन्यु के पास ही आकर खड़ी हो गई। वहां पर खड़े सारे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अर्पिता, जो वहीं मासा के पास गुमसुम सी खड़ी थी, उसके कान में एक तेज आवाज गूंजी, अर्पिता आपके अंदर अब इतनी हिम्मत हो गई है कि आप हमारे फोन कॉल्स को इग्नोर कर रही हैं? जैसे ही अर्पिता ने ये बात सुनी तो वो पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने देखा महल के गेट से अंदर आते हुए उसे जयराज दिखा। जयराज को देखते ही अर्पिता की सांस थम गई। अभिमन्यु और मासा जयराज की तरफ देखने लगे। समर्थ अर्पिता के जस्ट पीछे आकर खड़ा हो गया। अर्पिता जयराज को इतना गुस्से में देखकर थोड़ा सा घबराई और वो दो कदम पीछे हट ही रही थी कि तभी वो समर्थ से टकरा गई। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्पिता अब घबराने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता के कंधे पर हाथ रखा। जयराज गुस्से से उसके पास आया और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने जैसे ही जयराज को देखा वो अर्पिता के बगल में आकर खड़े होते हुए बोला, आपको जो भी बात करनी है यहीं पर करिए। अर्पिता जयराज को देख रही थी और तभी जयराज ने अर्पिता को आंखें दिखाते हुए कहा, हमने आपको जो पेपर भेजे थे आपने उन पर साइन किया या नहीं? अर्पिता कुछ बोल नहीं रही थी और तभी मासा ने जयराज की तरफ देखते हुए कहा, किन पेपर्स की बात कर रहे हैं आप, जरा बताइए हमें। जयराज ने मासा की ये बात सुनकर उनकी तरह घूरते हुए कहा, क्यों आपकी लाडली बेटी ने आपको बताया नहीं क्या, डिवोर्स दे रहे हैं हम उन्हें। जैसे ही मासा ने ये बात सुनी वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात कर रहे हैं आप, होश में तो हैं आप, क्या बोल रहे हैं। मासा की ये बात सुनते ही जयराज ने कहा, हाँ बिल्कुल हम होश में ही हैं, और वैसे भी आपकी बेटी हमारे साथ रहने के लायक नहीं है क्योंकि वो हमारे खानदान को वारिस तक नहीं दे सकती, इसीलिए उसका हमसे डिवोर्स लेना ही सही होगा। अभिमन्यु ने जयराज के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप जयराज, बेहतर होगा कि अब आप अपनी जबान पर लगाम दें, और अगर अब आपने मेरी बहन के खिलाफ एक और शब्द भी बोला ना तो। जयराज अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करेंगे आप हमारे साथ। अर्पिता जयराज को गुस्से से घूरते हुए देख रही थी, तभी वो चुपचाप वहां से सीधे अपने कमरे में गई और अभिमन्यु ने जयराज की तरफ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। समर्थ को जयराज पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका मन कर रहा था अभी के अभी उसके चेहरे पर जोरदार पंच चढ़कर उसका बदसूरत चेहरा और ज्यादा बिगाड़ दे। तभी समर्थ ने अपने मन में कहा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना अभी अगर इसने अर्पिता के बारे में कुछ कहा तो मुझे सुना नहीं जाएगा, और फिर मैं अगर अपने गुस्से से बाहर हूँ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और इसे यहीं पर पीट दूंगा। इतना बोलकर समर्थ वहां से जा ही रहा कि तभी अर्पिता की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, ये रहे आपके डाइवोर्स के पेपर। इतना बोलकर अर्पिता नीचे उतर कर आई और उसने वो डाइवोर्स के पेपर जयराज के मुंह पर मारते हुए कहा, उठाइए इन्हें और हमारे घर से चुपचाप निकल जाइए। अर्पिता के इस मूव को देखकर जयराज की आंखें चौंधिया गई और उसने उन पेपर की तरफ देखा, उस पर अर्पिता ने साइन कर दिया था। जिस तरह से अर्पिता ने गुस्से में वो पेपर जयराज के मुंह पर मारे, जयराज गुस्से से तिलमिला उठा।
वो अर्पिता की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, आपकी इतनी हिम्मत कि आप हम पर। इतना बोलते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि अभिमन्यु अर्पिता और उसके बीच में आते हुए बोला, खबरदार अगर आपने एक कदम भी हमारी बहन की तरफ बढ़ाया तो। वहीं मासा ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, शांत हो जाइए सब लोग, और जयराज आप हमें ये बताइए कि क्या आप सच में अब अर्पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। जयराज ने बहुत ही घमंड से अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हमें ऐसी लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना जो हमारे परिवार को एक बच्चा तक नहीं दे सकती। तभी अर्पिता ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा ये क्या हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, हम खुद अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और वैसे भी इनके जैसा इंसान हम डिजर्व नहीं करते, हम इससे बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं। इतना बोलकर अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखा और समर्थ उसके मुंह से ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी अभिमन्यु जयराज की आंखों में आंखें डालकर काफी गुस्से से बोला, मिल गया ना आपको आपका जवाब, चलिए निकल जाइए हमारे राजमहल से और आइंदा कभी यहां नजर मत आइएगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या इप्सिता माफ करेगी अपने मम्मी पापा को जैसे उदय ने माफ कर दिया? क्या उसका दिल भी इतना बड़ा है वो भूल पाएगी सब? और अर्पिता को अच्छा जवाब दिया ना जयराज ने, उसके साथ तो बहुत पहले यही होना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।